को नमस्ते। ईशावास्योपनिषद की 10वां 9th और 10th मंत्र की चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम हमने 9th की चर्चा की थी। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इवते तमोयव विद्यायां रतः। जो लोग इग्नोरेंस में, सेंस ऑफ इग्नोरेंस जिनमें होता है, अज्ञान में होते हैं, वो अंधेरे में गिरते हैं। पर जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिनमें वो सेंस ऑफ नोइंग होता है, वो ज्यादा गहरे अंधेरे में गिरते हैं। हमने लास्ट टाइम थोड़ा इसके ऊपर चर्चा किया डीपली, कैसे जिसको ये भान है, पता है कि मैं नहीं जानता हूं, उसके लिए दोनों रास्ते खुले हैं। या तो वो ज्यादा इग्नोरेंट बनेगा या नॉलेजेबल बन सकता है, दोनों रास्ते ओपन है। पर वंस यू डिसाइडेड, यू थॉट दैट आई नो दिस थिंग, देन योर ऑल द डोर्स आर नाउ क्लोज्ड, देयर नथिंग टू नो। कोई कितना भी बताए, अच्छा बताए, बुरा बताए, आपके अंदर से लॉक्ड है। तो ईगो जो होता है वो हमें आगे बढ़ने के लिए रोकता है। ईगो ऑफ नॉलेज भी वही है, जैसे ही हमारे अंदर ये समझ आ जाने लगे मैं जानता हूं, तो जानने की जो प्रोसेस है रुक जाता है। जनरली इसीलिए देखा जाता है जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ज्यादा विनम्र होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सेंस रहता है मैं जितना भी जानता हूं वो कुछ भी नहीं है, ज्ञान अनंत है, दुनिया अनंत है। पर ठीक इसका अपोजिट भी देखा जाता है, जो किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ा कम जानता है उनमें अकड़ ज्यादा दिखता है, मैं सब जानता हूं का भाव ज्यादा दिखता है। इवन एक व्यक्ति अगर किसी खास विषय में बहुत ज्यादा जानता है वहां वो पोलाइट हो जाता है, दूसरे सब्जेक्ट में जहां उसको कम नॉलेज है वहां ज्यादा अकड़ने लगता है। क्योंकि इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना या अपने अंदर वो सेंस रहना, ये बहुत बड़ी चीज होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जब हमें लगता है, इसी तरह नॉर्मल लाइफ में भी जब हम अपने दोषों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक्सेप्ट करते हैं तो फिर सुधरने के चांसेस बहुत होते हैं। पर जब हमें दोष दिखते ही नहीं है अपने अंदर, फिर तो सवाल ही नहीं उठता भगवान भी आ जाए कोई, हमें कोई सुधार दे हमारी लाइफ में। ये सब जगह होता है। पर ये जो विद्या और अविद्या की चर्चा इस उपनिषद में है वो सिर्फ ये बहुत सुपरफिशियल स्टेज पर नहीं था कि कोई इग्नोरेंट है या कोई नॉलेजेबल है, इसका थोड़ा कोई दूसरा भाव है। दूसरा भाव ये है, इसको समझने के लिए हमें जो पूरे ओवरऑल जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन में दो तीन चीजें समझने की जरूरत है, फिर हम इस पर आएंगे। मुंडक उपनिषद में कथा है, एक बार आपके ही तरह कोई बहुत बड़ा कोई धनी व्यक्ति जिसके बहुत बड़ा घर है, धन है, संपत्ति है और ज्ञानी भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ धन संपत्ति है, और केवल ज्ञानी नहीं है, उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी भी है, मतलब उसका सेंस मैं जानता हूं ये भाव नहीं है। ऐसा शौनक नामक एक व्यक्ति जो महाशाल है, मतलब बहुत बड़े घर वाले है, धनी है पर ज्ञानी भी है, वो एक दिन गुरुकुल में, गुरुकुल ज्यादातर जंगल में होते, सारे आचार्य लोग गुरुकुल में रहा करते थे, तो जब उनके बच्चे तो गुरुकुल में पढ़ते ही थे, पर जब उनके मां बाप को, ग्रैंड पेरेंट्स को या किसी को कभी कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होता है, जानने की इच्छा होती है, तो वो जंगल जाते हैं, गुरुओं से मिलते हैं। तो इसी तरह ये गुरुकुल के आचार्य अंगिरस हैं, तो आचार्य अंगिरस के पास शौनक आते हैं, आकर के प्रार्थना करते हैं। जैसे भी गुरु के पास जाने पर कभी आप कुछ पूछने जाना चाहते हैं, जानना जाना चाहते हैं, उसकी एक सिस्टम होता है, उसका एक वे अप होता है। जैसे आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं, प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं, गवर्नर से मिलने जाते हैं, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसी तरह जब आप अपने गुरु से या किसी से ज्ञान लेने जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है। तो सारे प्रोटोकॉल को फुलफिल करके शौनक प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, भगवान मैंने आपको बार बार कहा संस्कृत में भगवान ईश्वर के लिए नहीं होता है, कोई भी हमसे बड़ा हो ज्ञान में, गुण में, धन में, यश में, वो सब भगवान होते हैं। कहला हे भगवान मतलब लॉर्ड सर, मुझे ऐसा कुछ बताइए, मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत लिखा है, हजारों किताबें पढ़ी, हजारों चीजें सुनी है, पर अंदर से अभी भी खुलापन है, वैक्यूम है, कुछ लगता है कि खोखला सा है, कुछ भरा नहीं है, कुछ ऐसा बताइए कि जिसको जान लेने के बाद और कुछ जानने को बचे ही नहीं है। शौनकोह वै महाशालो अंगिर संविधिवद उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। क्या जान लेने पर और कुछ जानने को बसता नहीं है। तो गुरु अंगिरस कहते हैं तस्मै सहोवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्मयत् ब्रह्मविदो वदन्ति पराचैवा पराच। गुरु जी ने अंगिरस ने कहा कि देखो तुमने जो सवाल पूछा ठीक है, पर उसका एक पार्ट में थोड़ा करेक्शन करो। ऐसी कोई एक ज्ञान नहीं है जिसको जान लेने पर सब कुछ जान जाओगे, दो ज्ञान जरूरी है जिसको जान लेने पर सब कुछ जान सकते हो। वो दो कौन है? बोला एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। अपरा मतलब लोअर लेवल का नॉलेज है, जिसे हम सांसारिक ज्ञान जिसको कहते हैं, जो मैटेरियल लाइफ में जो चीजें जानना जरूरी है, घर चलाने से लेकर, खेती करने से लेकर, ऑफिस में काम करने से लेकर, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से, मेडिकल साइंस से, रिलेशनशिप से, उन सब ज्ञान जिससे हमारा डे टू डे लाइफ चले, अच्छा चले, वो अपर विद्या है, वो भी बहुत जरूरी है जानना। नंबर टू पराविद्या भी जानना, जो बियॉन्ड उससे हो जाए, डे टू डे लाइफ से भी ऊपर जो हो, जहां आप खुद को समझते हो, समझानते हो, वो विद्या पराविद्या द सुपीरियर नॉलेज है। इन दोनों को जब तुम जानोगे तभी तुम्हारी सारी जो शंकाएं हैं, जो इच्छाएं, वो खत्म हो जाएगी कि और कुछ बचा नहीं बचा। नोट रखिए ये पराविद्या और अपराविद्या। इधर कठोपनिषद में वही गुरु आचार्य यमराज हैं। यम मतलब मृत्यु, डेथ, जहां आचार्य के रूप में है, और शिष्य एक 8 साल का बच्चा नचिकेता है। नचिकेता पूछता है कि ऐसा कौन सी चीजें हैं जिसको जानना जरूरी है, मृत्यु के बाद क्या होता है, कुछ रास्ता बताओ, ये लाइफ सच होता है झूठ होता है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, कुछ बताओ, कुछ ज्ञान दो जिससे समझ में आए लाइफ क्या है। अगेन यमराज अपने ढंग से, कठोपनिषद की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, मैटर वही है। अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते। तो आचार्य यम कहते हैं कि दो चीजें चीज जानने लायक होती है, लोगों में दो चीजों के प्रति अट्रैक्शन होता है, जानने की पाने की इच्छा होती है। एक रास्ता, एक वे, जिसको मुंडक उपनिषद में विद्या कहा, कठोपनिषद में उसको वो रास्ता कहता है, टूल्स कहता है, इंस्ट्रूमेंट कहता है, वे कहता है। दो तरह के रास्ते हैं सुख पाने का, एक प्रेय जिसको मजा आता है, जिसको पाने में, जिसके पीछे पढ़ने में भी मजा आता है, जिसको पाने में भी मजा आता है। नेचुरली वो मैटेरियल लाइफ है, धन कमाना, पावर कमाना, पॉलिटिक्स, ये सब चीजें, घर से रिलेशनशिप निभाना, इसमें मजा आता है, प्रेय है, प्रिय है, अच्छा लगता है, पर ये भी जरूरी है। दूसरा जो रास्ता होता है श्रेय, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता, वैसे ही लगता है कि रोज नीम के पत्ते भून के खाओ, करेले की सब्जी खाओ, उबले हुए सब्जी खाओ, पर ये बड़े काम की चीजें हैं, श्रेय हैं, श्रेष्ठ हैं, बेटर है, सुप्रीम है। दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों में से अगर तुम एक को चुनोगे तो गलत रास्ते पर जाओगे। तो रास्ता दो है, श्रेय और प्रेय। मुंडक उपनिषद कहता है दो विद्या है, परा और अपरा। और इसी चेन में, इसी कड़ी में महर्षि कणाद, जो कि वैशेषिक दर्शन के रचयिता हैं, ऑथर हैं, वो धर्म को डिफाइन करने के लिए लिखते हैं कि क्या धर्म है। तो वो लिखते हैं यतो भ्युदय निश्रेयसो सिद्धि सधर्म। धर्म उस चीज का नाम है, उस व्यवहार का नाम है, उस काम का नाम है, उस सोच का नाम है, जिसको करने से इस जीवन में हर तरह का अभ्युदय हो। अभ्युदय मतलब हर तरह की प्रस्परस बने, धन हो, यश हो, कीर्ति हो, नाम हो, हेल्थ हो, ये सब उसमें आ जाता है प्रॉस्पेरिटी में। आजकल तो प्रॉस्पेरिटी के नाम पर सिर्फ हम पैसा देखते हैं, नहीं, हमारे पूर्वज समझते थे हेल्थ भी आपकी प्रॉपर्टी है, उसको भी, उसमें भी आपको प्रॉस्पर बनना चाहिए, वो पावर, नाम, फेम, एवरीथिंग। जिस काम को करने से ये सब मिलता हो और मरने के बाद निश्रेय, उस सभी तरह के पेन से, सफरिंग से आपको छुटकारा मिलता हो, मुक्ति मिलता हो, इन दोनों कार्यों को, दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के जो भी काम है वो सब धर्म है। यहां भी दो है, एक निश्रेय की रास्ता, एक अभ्युदय की रास्ता। अब हम आते हैं कि आज जो जो जिस उपनिषद की हम बात करते हैं, ईशावास्य उपनिषद की, वो कहता है एक विद्या है और अविद्या है। मतलब ये सारे ऋषि अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से एक ही चीज की बात कर रहे हैं, एक जो आपकी बॉडी, माइंड या फिजिकल चीजों के लिए खुशी लाए, एक वो विद्या है, एक वो रास्ता है। दूसरा जो आपकी आत्मोन्नति के लिए, जिसमें आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हेल्प करे, रास्ता बताए, वो एक विद्या है, रास्ता है। दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते में से कोई खराब है, कहते हैं नहीं, कोई खराब कोई भी नहीं है। ओनली थिंग इज उनकी जो स्टेजेस हैं अलग अलग हैं, एक एलिमेंटरी स्टेज है, एक लोअर लेवल का स्टेज है, एक हायर लेवल का स्टेज है, दोनों की जरूरत है। आप एलिमेंटरी स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं करते, आपको एलिमेंटरी मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, सोशल साइंस नहीं आता, आप क्या मास्टर करेंगे, क्या साइंस पढ़ेंगे, क्या आर्ट पढ़ेंगे, क्या ड्रामा पढ़ेंगे, क्या लैंग्वेज पढ़ेंगे, कुछ नहीं। सो टू बी ए मास्टर यू हैव टू गो थ्रू द एलिमेंटरी स्टेजेस। सो एलिमेंटरी स्टेजेस लोअर है डेफिनेटली, पर वो इग्नोर करने लायक नहीं है, दोनों की जरूरत है। पर सोसाइटी में प्रॉब्लम कहां है? ईशोपनिषद कहता है जो, ध्यान से सुनिएगा, जो मैटेरियल लाइफ में फंसा हुआ है, अविद्या में, अपरा विद्या में, प्रेय में या अभ्युदय में, अलग अलग ऋषि अलग अलग शब्द यूज करते हैं, ओवरऑल मैटेरियल लाइफ में जो बॉडी को खुश करने में लगा है, माइंड को खुश करने में लगा है, वो अंधेरे में गिरता है। और मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे और बड़े ज्ञानी हैं, आप आसानी से समझते हैं, पालते हैं, नहीं पालते हैं हम लोग वो अलग बात है, पर जानते सब हैं। पर जो मुश्किल वाली जो चीजें हैं वो ये कहता है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज में फंसा हुआ है वो ज्यादा गहरे अंधेरे में गिरता है। अब यहां आपको बड़ा चोट लगेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी आपकी जो जो परसेप्शन है, जो ज्ञान है, उसको वो चोट करता है। ये तो हम मान लेते हैं, जो सांसारिक लोग हैं, जिनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान की नहीं, इच्छा नहीं है, धन संपत्ति चीजों के पीछे पड़े रहते हैं, आफ्टर ऑल उनको दुख से गुजरना पड़ता है, ये फैक्ट है, सब जगह हम सुनते हैं। पर ये नहीं सुना कि जो आत्मज्ञान के पीछे पड़ा हुआ है, स्पिरिच पराविद्या के पीछे पड़ा है, श्रेय विद्या के पीछे पड़ा है, वो गहरे अंधेरे में गिरता है। क्यों गिरता है? दोनों में क्या अंतर क्या है? जब आप एक्सक्लूसिव हो जाते हो, वन साइडेड होते हो, तो कोई भी चीज आपके लिए अच्छा नहीं होता है। आप केवल शरीर पर ध्यान देते हो, माइंड पर काम नहीं करते हो। हम देखते हैं आजकल क्यों इतने सारे डिप्रेशन लोगों को होता है, इतने सारे नींद नहीं आती है, इतनी सारी गोलियां खानी पड़ती है, इवन छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह स्ट्रेस लेवल होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की और हमारी सारी सारा फोकस रहता है बच्चा फिजिकली कितना अचीव करता है, पढ़ लिख इसीलिए ना लेके इंटेलेक्चुअली बहुत हाई हो जाए कि प्रोफेशनली कितना बड़ा आगे बढ़ सकता है। प्रोफेशनली बड़ा बनने का मतलब क्या है? कितना पैसा कमाएगा, कितना नाम कमाएगा, इससे किसको सेटिस्फेक्शन होगा? बॉडी को होगा, इंद्रियों को होगा। और इस चक्कर में हमने कभी माइंड को इग्नोर किया, मन का भी कुछ भूख है, आत्मा का भी कुछ भूख है, तो होता क्या है बाद में हमारे पास बहुत कुछ होता है, अच्छा घर होता है, अच्छा पैसा होता है, नाम होता है, सब कुछ होता है, अंदर से हम बड़े टूटे हुए से होते हैं। सब नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं तो कुछ तो लोग होते ही हैं, मतलब वही लोग होते हैं जो जिनका पूरा फोकस 100 नहीं तो 90% फोकस सिर्फ बाहरी दुनिया में होता है, बॉडी और सेंसेस को खुश करने में लगा रहता है। ये डे टू डे लाइफ में हमारे घर में भी आपको मिलेगा, हमारे बाहर भी नेबरहुड में भी मिलेगा, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बच्चों को भी इसी तरह की ट्रेनिंग देते हैं कि बस पढ़ो पैसा कमाओ और किसी पर फोकस नहीं करना। तो ऐसे सबके घर में जिन बच्चों को कभी कोई माइंड के बारे में, आत्मा से रिलेटेड, दुनिया के परे भी कोई दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ना उनको इसमें ऐसा कोई संस्कार डाला गया, सब जगह ये प्रॉब्लम मिलता है, बच्चे किस तरह के परेशानी से गुजरते हैं। तो ये फैक्ट है। जब आप केवल अविद्या के पीछे पड़ते हैं, मैटेरियल लाइफ के पीछे दौड़ते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं लोगों के पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, नाम है, पर कितने टूटे हुए होते हैं। ये ड्रग लेने का आदत बढ़ा क्यों? बढ़ा। अल्कोहल की कंजप्शन क्यों बढ़ता है? क्योंकि लोग गम भुलाने के लिए अलग अलग सहारे लेने लगते हैं। ये सब जो मैंने बोला मेरे से ज्यादा आपको पता है, पर जो इंटरेस्टिंग बात है, जो व्यक्ति इन सब को छोड़ के शरीर के सुख या सांसारिक चीजों को माया मानकर या जो भी मान करके केवल आत्मा के पीछे पड़ा हुआ होता है, वो गहरे अंधेरे में, उससे भी ज्यादा गहरे अंधेरे में गिरता है। इसका क्या भाव है? भाव है कि जब आप नेचर को इग्नोर करते हो, जब लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हो, बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स, आप किसी से मोटिवेटेड हो गए, इंस्पायर्ड हो गए और आपने सोचा कि ये दुनिया कुछ नहीं, सब छोड़ो, मैं तो चला आत्मा ढूंढने, परमात्मा ढूंढने, हिमालय के शिखर में, चोटियों में, या किसी चर्च में फादर बना, नन बनी, सब छोड़ छाड़ के। जब आप अपनी बॉडी की, माइंड की, इंटेलेक्ट की रिक्वायरमेंट को, उसकी नीड को नहीं समझते हो, जबरदस्ती सप्रेस करते हो, तो होता क्या है? अंदर से हम हिपोक्रेट बनते हैं। और हिपोक्रेसी एक बहुत बड़ी बीमारी है, सोसाइटी में हो ना हो, स्पिरिचुअलिटी में ये सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है, क्योंकि वो आपकी माइंड को इम्प्योर करता है, अशुद्ध करता है, गंदा करता है, आपकी माइंड की जो प्योरिटी है वो खत्म हो जाती है। ये हिपोक्रेसी, माइंड और बॉडी, माइंड आपकी बाहर और अंदर में जब बहुत ज्यादा अंतर दिखता है, मतलब मैंने संसार तो छोड़ दिया फिजिकली, पर अंदर से मैं ढूंढता रहता हूं कि मुझे भी कोई प्यार करे, पैसा तो मैंने छोड़ दिया कमाना फिजिकली, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, सन्यासी बनना है, वगैरह वगैरह, पर अंदर से मुझे पैसे की जरूरत महसूस होती है और मैं बोल नहीं पाता हूं, पर मैं फिर दूसरे रास्ता अपनाता हूं, जिसको जस्टिफाई करने के लिए हजार तरह के मैं एक्सक्यूजेस ढूंढता हूं। मैंने ये तो छोड़ दिया कि मुझे नाम, यश, कीर्ति, ये सब फिजिकल चीजें हैं, इसको छोड़ना है, मुझे अंदर की यात्रा करनी है, पर अंदर वो मिटा नहीं है, तो मैं फिर दूसरे तरीके से नाम कमाने की कोशिश करता हूं, तो होता क्या है, डिसऑनेस्टी पनपती है। और जब अंदर से आप डिसऑनेस्ट हुए तो कौन सा राम कौन सी माया है? माया तो मिलने से रही क्योंकि आपने छोड़ दिया, कम से कम घर गृहस्थी लोग आत्मानंद को एंजॉय नहीं करते कि जो शरीर के आनंद को तो एंजॉय कर ही लेते, पर जिसने शरीर को इग्नोर किया, माइंड को इग्नोर किया, सिर्फ आत्मा के पीछे भागा, ना शरीर का सुख मिला किसी दूसरे आम घर गृहस्थी मैटेरियल लाइफ में जीने वालों के तरह, ना आत्मा का सुख मिला क्योंकि अंदर से आत्मा की खोज तो कभी हुई ही नहीं। मन से, मन में तो उन्हीं चीजों की लालसा बनी रही, पैसा धन संपत्ति, सिर्फ कपड़े बदल गए, शरीर का रूप रंग बदल गया, चीजें बदल गई, अंदर से तो वही चीजें हैं। इसलिए हमारे शास्त्र अविद्या को बुरा नहीं मानते, एलिमेंट्री मानते हैं, लोअर मानते हैं, पर आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, इसी के साथ चलोगे। अगला मंत्र इसी बात को कहता है, अन्य देवाहुर विद्यया अन्य दाहुर विद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विज चक्षिरे। बोले देखो, आपको अगर बहुत डाउट हुआ, हमने कोई ऐसी बात कह दी जो थोड़ा चोट करने वाली है कि भाई आप अगर मैटेरियल लाइफ में ज्यादा घुसे हो तो आपको अंधेरे में गिरना होता है, और अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज्यादा घुसे हो तो आपको उससे ज्यादा गहरे अंधेरे में घुसा है, अगर समझ में नहीं आया, कंफ्यूज्ड हो गए, आपके अंदर परेशानियां बढ़ गई, ये क्या बात कह दी आपने, हाउ डेयर यू टू से लाइक दिस दैट तो वगैरह वगैरह, तो भाई देखो हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अन्य देवाहुर अविद्या, विद्या का अपना फल है, अविद्या का भी अपना फल है। विद्या अविद्या समझ में आ गया, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया। अविद्या मतलब अपरा विद्या, जिसको प्रेय कहा, जिसको अपरा कहा, जिसको अभ्युदय कहा, मतलब जो शरीर और मन से रिलेटेड सुख ढूंढने की जो भी साधन है उनके अपने फल होते हैं, उनको आप डिनाय नहीं कर सकते हो, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो। विद्या के भी अपने फल है, एक एप्पल एक ऑरेंज दोनों को मत मिलाओ। ऑरेंज खाने के लिए एप्पल छोड़ना जरूरी नहीं है, एप्पल खाने के लिए ऑरेंज छोड़ना जरूरी है, दोनों की अपनी अपनी यूज है, और कभी कभी एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, तो वो तब करेंगे जब हमें समझ में आएगा। तो अविद्या का क्या फल होता है? नेचुरली जो शरीर को मन को सुख दे वो सब अविद्या है, उसका अपना फल है। रोटी अविद्या है जी, रोटी के बिना जी नहीं सकते, क्योंकि रोटी से शरीर भरता है, शरीर की जरूरत होती है रोटी खाना, तो रोटी अविद्या है। और जो आदमी रोटी के पीछे पड़ा रहा, जो लाइफ में और कुछ नहीं किया, सिर्फ रोटी ही खाता रहा, नेचुरली वो दुख भोगेगा। इसीलिए रोटी की अपनी जरूरत है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कपड़े अविद्या है, मैटेरियल चीजें शरीर के लिए है, आप कपड़ों को छोड़ नहीं सकते हो, नंगे घूम नहीं सकते हो, ठंड है गर्मी है मौसम के हिसाब से चलना होता है, सामाजिक का जरूरतें होती हैं, पर ये अविद्या है, ये मैटेरियल चीज है, शरीर को सुख देता है, पर इसका अपना फल है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। आपको घर चाहिए घर रहने के लिए, घर क्या है? अविद्या है, मैटेरियल चीजें हैं। अब घर में नहीं रहोगे तो बीमार पड़ोगे, और भी बहुत सारी परेशानियां, सर्दी है गर्मी है ठंड है, कैसे रहेंगे कहां रहेंगे? तो जो शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए, खुशी देने के लिए, आनंद देने के लिए जो भी विद्याएं हैं, जो भी रास्ते हैं, वो सब अविद्या है। अविद्या का अर्थ यहां इग्नोरेंस के अर्थ में नहीं है, इसका अर्थ है जिससे शरीर को और मन को सुख देने के लिए जो चीजें किया जाता है वो सब अविद्या है। दूसरी विद्या है जो आत्मा के आनंद के लिए जो कोशिश करते हैं, तो दोनों का अपना अपना फल होता है। तो अविद्या मतलब जीविका के लिए, जिंदा रहने के लिए जो जरूरतें हैं उनको जानना, उसके पाने की कोशिश करना, वो सब चीजें हैं। पर जब अगर हम उसी में ही रुक जाएं तो फिर प्रॉब्लम होता है। विद्या क्या है? खुद को जानना, शरीर और मन और इंटेलेक्ट तक जानना, उसको खुश करने की कोशिश करना विद्या। थोड़ा और नीचे गिर जाना, नीचे अंदर चले जाना, डीपली चले जाना, वो आत्मा को जानना विद्या है। विद्या उसका नाम है। अविद्या से क्या अंतर है? जिसको जानने से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, न कि सोशल स्टेटस बढ़ता है। जिस ज्ञान से आपकी सोशल स्टेटस बढ़ता है वो मैटेरियल चीजें हैं, अविद्या है। जिसको जानने से अंदर का रिफॉर्मेशन होता है वो विद्या है, वो सेल्फ नॉलेज है। आप आश्चर्य करेंगे, ऐसा नहीं है कि जब अविद्या या अपराविद्या कहता है तो सिर्फ मैटेरियल चीजों का मतलब जो बाजार में मिलता है वही चीजें। मुंडक उपनिषद में लिस्ट देती है, बोले वेद, इवन जो उपनिषद आप सुन रहे हैं, जो खुद बात कर रही है विद्या और अविद्या के बारे में, बोले ये वेद, उपनिषद, धर्म शास्त्र, इवन धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद, ये सब भी अविद्या की कैटेगरी में आते हैं, अगर ये आपकी सोशल स्टेटस बढ़ाने में हेल्प करते हैं तो। तो नॉर्मली लोग क्यों ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं? कुछ ऐसा उससे बनाएं या पाएं जिसे बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई करे, सोशल स्टेटस बढ़े, एक्सेट्रा। उपनिषद पढ़ लेने से आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, किताबों से पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होता। वो तो बुकिश नॉलेज है ना, इंफॉर्मेशन है। उससे हमारी, मैंने पहले भी आपको बहुत बार कहानी सुनाई वो महंगे तोते और सस्ते तोते की, उससे हमारा जो कॉस्ट है, वैल्यू है, वो बढ़ जाता है और कुछ फायदा नहीं होता है। पर जब हम उस चीज को प्रैक्टिस में लाते हैं, लाइफ में जब ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, फिर वो विद्या में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसको जानने से आत्मा का आनंद प्राप्त होता है, वो जिसको जानने से लाइफ में चेंजेस होने दिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होना दिखता है, वो विद्या है। वो किसी भी फील्ड का हो। और अगर सुपरफिशियली नॉलेज है, बुक से जाना है, गुरु से जाना है, इधर से जाना है, जस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, वो होर्डिंग होती है। जैसे आप पैसे पोजेस कर होर्ड करते हैं, घर द्वार और बहुत सारी चीजें आप होर्ड करते हैं, वैसे नॉलेज को अपने अंदर होर्ड करते हैं। होर्डिंग से जब आप बहुत चीजें रखते हैं, उससे सोशल स्टेटस बढ़ सकता है, उससे आपके माइंड को सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पावर है। इसी तरह किसी के कि कोई कहेगा कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, और ज्ञान भी अच्छी क्वालिटी का ज्ञान है, आत्मज्ञान है। क्वालिटी में फर्क होगा, वैल्यूज में फर्क आएगा, दैट्स इट। इसलिए ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि जो उपनिषद पढ़ता है, पढ़ाता है, तो वो सब आत्मज्ञानी हो गए और जो नहीं पढ़ा वो बेचारा घर गृहस्थी रह गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप उसको जो इंफॉर्मेशन लिया, आपने उसके अंदर कैसे, वो कहां आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। 24 घंटे CNN में, फॉक्स न्यूज में घुसे रहने से कोई पॉलिटिशियन नहीं बन जाता। आप कहेंगे कि मुझे सब पता है, ट्रंप क्या करता है, ओबामा क्या करता है, रिपब्लिकन पार्टी की एक एक चीज पता है, वोटर कहां वोटता है सब पता है। पता है, किसी काम के नहीं है, सिवाय आपके पास बहुत सारा नॉलेज है ना। आप तो किसी टाउनशिप के काउंसिलर भी नहीं बन सकते। तो वो होर्डिंग होता है, नॉलेज काफी है, हो सकता है सेमिनार में आप एक्सपर्ट बन के जाए बट यू कैन नॉट बी ए पॉलिटिशियन अंटिल यू जंप टू द पॉलिटिक्स। ठीक इसी तरह आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत सुनने पढ़ने जानने बोलने से कोई आत्मज्ञानी बन नहीं जाता, जैसे कोई CNN फॉक्स देखते देखते पॉलिटिशियन नहीं बनता, आपको कूदना पड़ता है पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन बनना हो तो। इसी तरह आत्मज्ञान में आत्मा को पाने के लिए कूदना पड़ता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट करना पड़ता है। जिस दिन आप कूदने लगते हैं तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने दिखता है। तो आप कहते हैं कि इसका मतलब CNN फॉक्स ना देखें, पॉलिटिकल न्यूज ना देखें, नहीं, किसने कहा? वो एलिमेंटरी चीज है। आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? नॉलेजेबल बुक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बेसिक है। बिना मैथमेटिक्स पढ़े आप कौन सा इंजीनियर और कौन सा साइंटिस्ट बनेंगे? जब तक आप प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ये सब नहीं जानते तो कौन सा साइंटिस्ट कौन सा इंजीनियर बनेंगे? पर प्रॉब्लम है, अगर आपने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन पढ़ने के बाद सोच लिया कि मैं साइंटिस्ट बन गया तो फिर गलत हो गया। इसी तरह शास्त्रों को भी, उपनिषद वेद आदि शास्त्र, वो आपको उस जो पहले लेयर है स्टेज तक पहुंचाएंगे। अगर आप उसी को पढ़ने के बाद समझने लग गए कि भाई हमें तो सारा ज्ञान हो गया तो फिर हम वहां अविद्या में ग्रस्त हो गए। पर जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस में लेने लगते तो विद्या का रास्ता खुलने लगता है, और जैसे ही प्रैक्टिस में लाने लगेंगे फिर आपके लाइफ एज इट इज नहीं रहेगा, चेंज होने लगेगा। बिल्कुल वैसे जैसे आप न्यूज देखने से आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं होता है, न्यूज देखने के बाद जब आप खुद पॉलिटिक्स में ज्वाइन करते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल बदल ही जाता है। बिल्कुल वैसे ही शास्त्र पढ़ने सुनने से लाइफ नहीं बदलता, ज्ञान बढ़ने लगता है, पर वो ज्ञान फिर यूजलेस हो जाता है अगर उसका यूज नहीं होता है। जैसे ही आपने यूज करने लगे, आप मेंटली फिजिकली नहीं, मेंटली इंटेलेक्चुअली आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगेगा, आपके व्यवहार नेचुरली फिजिकली वो दूसरों को दिखने लग सकता है। जरूरी नहीं दिखेगा, दिख सकता है अगर आप बहुत ज्यादा सोशल है तो। तो विद्या का जो पहला रिजल्ट होता है, इंस्टेंट रिजल्ट होता है कि वो आपको इंस्टेंटली चेंज करता है। बिल्कुल वैसे आप फायर क्या है, आग क्या है, आप हजारों रिसर्च कर लीजिए फायर क्या है, पर आपको फायर के पर अगर आप आग में जब तक आपकी हाथ आपने डाली नहीं, आपकी अंगुली कभी जली नहीं, आपके हाथ में कभी उसकी गर्माहट का एहसास हुआ ही नहीं, तो आप कभी समझ नहीं सकते आग की गर्मी क्या होती है, बुक में कितने भी पढ़े रही है। इसलिए आपका बच्चा, क्योंकि क्लीन माइंडेड होता है, जब मां के पेट से आता है उसके अंदर वो नॉलेज का कोई ईगो नहीं रहता है, बिल्कुल ब्लैंक रहता है, ही इज ऑलरेडी रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग जो भी सीखा है। आप इसको 50 बार बोलिए कि आग गर्म होता है, हाथ जल जाएगा, मत छुओ मत छुओ, वो नहीं मानने वाला। एक बार तो वो छुएगा ही छुएगा, अंगुलियां जलेगी, गर्मी का एहसास होगा, रोएगा, थोड़ा होगा ज्यादा होगा, फिर दोबारा जाएगा ही नहीं आग छूने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना? बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कल तक आप जो 2 साल तक सिखाते रहे आग गर्म है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ कुछ ज्ञान बढ़ा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होते गए, पर लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आया। पर जैसे ही आग को छुआ उसी क्षण उसकी लाइफ में एक चेंज आया, आगे से आग वो नहीं छुएगा, आग से दूर रहेगा, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। वो कैसे हुआ? डायरेक्ट नॉलेज से, जब आप खुद डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व होकर के नॉलेज लेते हैं हर मामले में, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं, किसी भी फील्ड में जब तक आप डायरेक्ट नहीं कूदते। आपको पॉलिटिक्स करना है तो आपको पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, न्यूज देखने से आप बन नहीं सकते। आपको बिजनेस करना है, बिजनेस में एक्शन पढ़ने से नहीं बनता, आपको कूदना पड़ेगा, दुकानदारी करनी पड़ेगी, आप फेल होंगे, पास होंगे, आपकी नुकसान होगा, लाभ होगा, जो भी होगा, यू हैव टू जंप टू दैट। अगर सब चीज में आपको ही कूदना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी किताब पढ़ पढ़ के कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। उसी को कहते हैं विद्या। सो विद्या का अपना फल है और अविद्या का अपना फल है। मान लीजिए अविद्या जड़ है, पेड़ को बढ़ना है ना, तो रूट के बिना पेड़ बढ़ नहीं सकता, बट रूट हमारे लिए यूजलेस है। हमें तो पेड़ चाहिए, पेड़ के ब्रांचेस चाहिए, उसके पत्ते चाहिए, उसके फूल चाहिए और उसके फल चाहिए। पर प्रॉब्लम है कि पेड़ कितना भी बड़ा होगा, उतने ही अंदर से उसकी रूट गहराई में गया होगा। रूट जो है वो अविद्या है। और आप जब भी पेड़ को बचाने की कोशिश करेंगे, पेड़ को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, उसको हेल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, आप ब्रांच के साथ कुछ नहीं कर सकते, आप फ्लावर्स के साथ कुछ नहीं कर सकते, आप फल के साथ कुछ नहीं कर सकते, आप उस ट्रंक के साथ भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी करना होगा उसके रूट में करना होगा। तो खेल तो अविद्या से ही शुरू होगी ना। तो अविद्या जो है, मैटेरियल चीजें जो, वो फाउंडेशन है, बॉडी फाउंडेशन है, माइंड फाउंडेशन है, इंटेलेक्ट फाउंडेशन है, सारा हमारा लाइफ इसी पर टिका हुआ है। इसको इग्नोर मत करो, पर इसको सब कुछ भी मत मानो। फाउंडेशन जरूरी है बिल्डिंग बनाने के लिए। फाउंडेशन बना करके मत सोचो कि यही सब कुछ है, फिर तो कभी घर का सुख ले ही नहीं सकते हो। पर दूसरा भी है कि मुझे घर चाहिए, फाउंडेशन क्यों बनाऊं? बड़ा यूजलेस है, तो भी आपको कभी घर नहीं मिलने वाला। तो मैटेरियल लाइफ भी जरूरी है, मैटेरियल चीजों को रेस्पेक्ट करना भी जरूरी है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को रेस्पेक्ट करना भी जरूरी है, और नेचुरली आगे की रास्ता भी, गोल थोड़ा लंबा होना चाहिए, खुद को आत्मा को पाने की कोशिश करनी चाहिए। ये अविद्या आपकी हार्डवेयर है, तो विद्या आत्मविद्या आपकी सॉफ्टवेयर है। अविद्या आपकी रूट है, विद्या आपका पेड़ है। अविद्या अभ्युदय है और विद्या आपका निश्रेयस है। अविद्या शरीर है, विद्या आत्मा है। इसलिए कालिदास दुनिया के सबसे बड़े पोएट में से एक हैं। संस्कृत में लिखते हैं, शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। तुम्हें अगर धर्म साधना है ना, तो शरीर का पहला ध्यान रखो। शरीर पहला है। शरीर मतलब सिर्फ शरीर नहीं होता है, शरीर मन और इंटेलेक्ट, इन सबका ग्रुप को सिंगल वर्ड में हम बॉडी कहते हैं। इनकी भी जरूरत है। तो मंत्र क्या कहता है? जो सिर्फ शरीर के सुख के पीछे पड़ा रहता है वो तो जानवर है, छोटा है, अंधेरे में गिरेगा, सिर्फ सेंसेस को सेटिस्फाई करता रहता है। पर जो इनको इग्नोर करके सिर्फ आत्मा के पीछे पड़ा रहता है, वो उससे भयानक अंधेरे में गिरेगा। क्यों? दोनों की जरूरत है, शरीर और मन बुद्धि का। इनका भी ख्याल रखो। जब आप इनका ख्याल रखते हो, तो दुनियादारी की चीजों का भी ख्याल रखो और आत्मा की पाने की भी कोशिश करते रहो। जब दोनों को हम साथ लेकर चलते हैं, तो जाकर के हम क्या अचीवमेंट होता है, अगले संडे में हम सुनेंगे। विद्या और अविद्या कैसे एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों को अलग कर दो तो वो डिजास्टर हो जाता है, पर दोनों को मिलाकर चलो तो जीवन में सुख, अगले लाइफ में भी सुख होता है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहीं इस बात को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू।